स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सपन्या नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना
आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से सपर्नेह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम सब देख रहे हैं कि सपर्नेह जो परमेश्वर का दास है, इसराइलियों के बारे में कहता है कि उन्हें अवसर दिया गया कि वे मन फिराएं, परंतु उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया और यही कारण परमेश्वर उन्हें दंड देता है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम और आगे की बातों को सीखें और सुने, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे ताकि आज का वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, आप हमें समझाते और सिखाते हैं। आज जब हम फिर से सपर्नेह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की सहायता करें। आज के वचन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं, आप हमारी अगुवाई करें ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इसराइल, यहूदा के पड़ोसी राज्यों के दंड की भविष्यवाणी करने के बाद एक बार फिर यरूशलेम की ओर ध्यान आकर्षित किया है। परमेश्वर की शिकायत थी कि यरूशलेम को परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त था, वहां परमेश्वर का मंदिर था, वहां शास्त्री लोग थे, शास्त्री परमेश्वर के वचन से परिचित थे, परंतु वे उस पर चलते नहीं थे। उसके हाकिम और उसके न्यायी गरीब प्रजा पर अंधेर करते थे, उनका मन अशुद्ध था जिसके कारण उनका आचरण भी अशुद्ध हो गया था। वे परमेश्वर से दूर थे, वे परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, वे व्यवस्था का अनुचित अर्थ निकालते थे और यही कारण है कि परमेश्वर उन्हें दंड देना चाहता है। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और सपर्नेह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ें। लिखा हुआ है, उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं, उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया है और व्यवस्था में खींच खांच की है। यहाँ पर लिखा है उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले। जी हाँ, वे परमेश्वर के दंड और परमेश्वर के निकट आने की शिक्षा देने की अपेक्षा अनर्थ बातें सुनाया करते थे, जैसे आज के अनेक प्रचारक भी करते हैं। तब लिखा है और विश्वासघाती हैं, अर्थात ठग हैं, धोखेबाज हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय को पढ़ें। परमेश्वर बदला नहीं है। जी हाँ, वहां भी प्रभु यीशु धर्म गुरुओं को झिड़कता है। वह आज भी समय के अंतराल में हमें दंड देगा। लिखा है उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया। कैसे कैसे अशुद्ध किया? उनके कारण संसार ने मंदिर की पवित्रता को तुच्छ जाना। उनके आचरण के कारण मंदिर और पवित्र स्थान का अनादर होने लगा है। शामुएल के समय भी महायाजक एली के पुत्र मंदिर में भ्रष्टाचार फैला रहे थे, जिसके कारण उपासकों के मन में पवित्र स्थान के लिए श्रद्धा समाप्त हो गई थी। आज कहा जाता है कि कलीसिया ने अपना मान नहीं रखा। मेरे प्रियो, मैं भी यही कहता हूं। मेरे विचार में यदि हम संसार में कलीसिया की पवित्रता और ईश्वरीय जीवन की गवाही न दें, तो मेरे विचार में कलीसिया सम्मान के योग्य नहीं है। इसलिए लिखा है व्यवस्था में खींच खांच की है। दूसरे शब्दों में उन्होंने व्यवस्था का अर्थ सही रीति से नहीं समझाया जैसा होना चाहिए। उन्होंने परमेश्वर के वचन की शुद्ध शिक्षा नहीं दी। व्यवस्था अर्थात परमेश्वर का वचन, जिसे उन्हें सिखाना चाहिए, उन्होंने सही रीति से लोगों को नहीं सिखाया। सपन्या 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है, यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा, वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। लिखा है कि यहोवा जो उनके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा। परमेश्वर कुटिलता नहीं करता है, जबकि उसके लोग सोचते हैं कि उनकी कुटिलता को देख परमेश्वर चुप है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर उनका अनुमोदन कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें दंड देने जा रहा है। परमेश्वर कुटिलता नहीं करता है। मेरे मित्रों, इस बात को आप भली भांति समझ लें और गांठ बांध लें कि परमेश्वर कभी भी कुटिलता नहीं करता है। वह मनुष्य नहीं है, वह परमेश्वर है। इस बात का ध्यान रखें। लिखा है वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। ध्यान दीजिए, अधर्मी अपने पाप में व्यस्त रहते हैं, उन्हें लज्जा ही नहीं आती है कि उनका पाप सर्वप्रगट है। सब लोग उसके जीवन को देख रहे हैं, फिर भी वह लजाता नहीं है। मेरे प्रियो, अध्याय 3 उसके पद 6-8 में भावी महाक्लेश का चित्रण है। सपन्या ने इसे यहोवा का भयानक दिन कहा है। अब सपन्या यरूशलेम से हटकर अंतिम दिनों में विश्व की सब जातियों के विषय भविष्यवाणी करेगा। यह हर्मगिदोन है जो प्रभु यीशु के आगमन पर समाप्त होगा। तो आइए हम पढ़ें सपन्या 3 अध्याय उसका 6 पद। मैंने अन्य जातियों को यहां तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहां तक सूनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहां तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मेरे मित्रों, मुझे प्राचीन युग की महान सभ्यताओं के भ्रमण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि हाल ही में वह ओस्तिया के खंडहरों में था। वह रोम का रंगस्थल था। वहां आज भी पत्थरों की सड़कें हैं जो रथों के चलने से खराब हो गई थी। आज तो वह एक वीरान स्थान है, परंतु उसका विकास किया जा रहा है और वह फिर से प्रसिद्ध स्थान हो जाएगा। अपने समय में वह एक प्रसिद्ध स्थान था। परमेश्वर कहता है, उनके नगर यहां तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। जी हाँ, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में चलते हैं, उसकी इच्छाओं का पालन नहीं करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में दंड आने देता है और तब हम परेशान हो जाते हैं और यहां तक कि हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। यहां पर कहा गया है कि उस नगर में कोई मनुष्य भी नहीं रहने पाया। सपन्याह 3:7 में आगे लिखा है, मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट ना हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। मेरे मित्रों, उन पर चेतावनियों का और दंड की आंच का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ था। इस कारण उन पर यहोवा का भयानक दिन आ पड़ेगा। जी हां, यह पृथ्वी पर परमेश्वर की अंतिम दंड है। आइए हम पढ़ें सपन्याह 3:8 में, जहां पर लिखा हुआ है, इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। हमारी पृथ्वी दंड की ओर अग्रसर है, बढ़ रही है, यद्यपि मनुष्य इसे नहीं मानता, परंतु हम दंड की ओर निश्चय ही बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, यह दंड तब आरंभ होगा जब प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को उठा लेगा। तब आरंभ होगा महाक्लेश, और जब प्रभु यीशु अपना राज्य स्थापित करने के लिए लौटेगा, तब उसका अंत होगा। दंड का अंत और प्रभु राज की स्थापना। अब हम अंधकार से दिन में प्रवेश करेंगे और आरक्षित आशीषों को देखेंगे। जहां तक सपन्याह की पुस्तक का प्रश्न है, आंधी थम गई है। पुस्तक का आरंभ अंधकारमय अमंगल से हुआ था और फिर दंड की चर्चा। इस अध्याय का आरंभिक प्रथम भाग, जो यरूशलेम के दंड की भविष्यवाणी करता है, अत्यधिक भयानक है। जी हां, आप महाक्लेश के चित्रण को देखते हैं, जब परमेश्वर जाति जाति को दंड देगा, क्योंकि वे उस समय यरूशलेम के विरुद्ध खड़ी होंगी, तो खून जम जाता है। जकर्या नबी के पुस्तक 14:1-3 में हम इसे पढ़ेंगे। सपन्याह की पुस्तक में हम दो प्रकार के दंड को देखते हैं। परमेश्वर अपनी प्रजा की ताड़ना करता है, क्योंकि जिसको वह प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी वह करता है। इसे हम इब्रानियों के पत्री 12:6 में भी पाते हैं। दूसरे शब्दों में, वह बच्चे को अनुशासन सिखाता है। दूसरा, परमेश्वर अविश्वासी संसार को भी दंड देता है। सपन्याह की पुस्तक एक आंधी, बाढ़, भूकंप के समान है। मेरे मित्रों, इस पुस्तक को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर यहूदियों से वरन संपूर्ण मानव जाति से घृणा करता है। आप सोचेंगे, कि वह बदला लेने वाला है। वह निर्दयी है, पाशविक है, उसमें भावना नहीं है। परंतु मैंने जो कहानी प्रस्तावना में आपको सुनाई थी वह सपन्याह के संदेश का उदाहरण है। एक कठोर मनुष्य ने उस छोटी बच्ची को ले जाकर एक पुरुष को सौंप दिया जिसने उसके पेट में छुरी घोंप दी। वह पुरुष उस बच्ची का पिता था। उस बच्ची को अपेंडिक्स का दर्द था और वह बहुत परेशान थी और वह एक डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। मेरे मित्रों, इसी प्रकार परमेश्वर अपनों को कष्ट में डालता है परंतु कष्ट पहुंचाने में भी वह प्रेम है। परमेश्वर चाहे अविश्वासी को दंड दे या अपनों को दंड दे, वह प्रेम ही है। एक दिन मनुष्य का समय पूरा होगा और खोए हुओं को दंड मिलेगा, परंतु परमेश्वर अपनी संतान को पुनः स्थापित करेगा और हम देखेंगे कि हमारे यहां के कष्ट वास्तव में छलावरण में आशीषें थी। जी हां, यह थोड़े समय का कष्ट है लेकिन बाद में आशीष है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक छोटा लड़का स्कूल के छात्रावास में था। वहां की पढ़ाई उसके लिए बहुत कठिन थी। उसे घर की याद सताने लगी। उसने घर पत्र लिखा, पिताजी यहां जीवन बहुत कठिन है, पढ़ाई बहुत अधिक है और छात्रावास के नियम बहुत कठोर हैं। मुझे घर की बहुत याद आती है। मैं आपका बेटा अपना घर आना चाहता हूं। उसके पिता ने उसे एक कठोर पत्र लिखा, तुम वहीं रहकर अध्ययन करो, परिश्रम करो, काम में मन लगाओ। पत्र पाकर उस लड़के ने सोचा, मेरा पिता मुझसे प्रेम नहीं करता है, अन्यथा वह मुझे ऐसा कष्ट क्यों उठाने देता। हमारा स्वर्गीय पिता कहता है, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूं। जीवन की इस पाठशाला में तुम इस जगह को योग्य समझो और यहां पर पढ़ाई करो। मेरे प्रियो, इसे ध्यान में रखकर हम सपन्याह के अंतिम भाग में प्रवेश करेंगे। सपन्याह की पुस्तक 3:9 में लिखा है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का दूरस्थ उद्देश्य है जो इस संपूर्ण अंश को प्रकट करता है। इस अंश में परमेश्वर के दंड का अंधकार और यहोवा के दिन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वह अंधकार में आरंभ होगा, अब सूर्योदय हो गया है और मनुष्य पर प्रकाश गिर रहा है। इसलिए यहां पर हम पढ़ते हैं, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। यहां शुद्ध भाषा का अर्थ इब्रानी भाषा नहीं है या नई भाषा का अर्थ कोई अन्य भाषा भी नहीं है। उसके कहने का अर्थ है कि उस समय निंदा नहीं सुनी जाएगी। भाषा में उस समय अभद्र एवं निस्सार शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। भाषा में घिनौनापन नहीं होगा। वह भाषा शुद्ध होगी। वह भाषा प्रेम की होगी। मेरे प्रियो, हमारी एक पड़ोसन थी। वह खुले दिल की थी परंतु उद्धार से रहित थी। उसकी बोली बहुत ही बुरी लगती थी। गुस्सा होने पर तो वह पूरे मोहल्ले में गरजती थी। उसकी भाषा ऐसी थी कि कुछ लोग तो उसकी रिपोर्ट थाने में भी करना चाहते थे। मेरे प्रियो, स्वर्ग की भाषा विचारों में, शब्दों में और कर्मों में परिशुद्ध होगी कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। उस परमेश्वर से बलवा करने वाला कोई नहीं होगा। स्वर्ग एक अति उत्तम मोहल्ला होगा और सच तो यह है कि वह एक महिमा से भरा हुआ स्थान होगा और वहां आपको बड़े अच्छे पड़ोसी भी मिलेंगे। आपको यहां हो सकता है कि बुरे पड़ोसी मिले हैं, परंतु वहां आपको अच्छे पड़ोसी भी मिलेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमारे जीवन में उन कार्यों को करना चाहता है ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की निकटता में बने रहें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें, अपने लोगों से प्रेम करें। आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखा रहा है कि किस प्रकार उसने इसराइलियों को दंड दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर से दूर थे। यदि आज मैं और आप परमेश्वर से दूर भागेंगे तो निश्चय जाने कि हम पापमय जीवन जिएंगे और परमेश्वर हमें दंडित करेगा। तो क्या आप अपने जीवन में दंड पाने की तैयारी कर रहे हैं, या एक अच्छे स्थान, अच्छे भाषी के लोग, अच्छे पड़ोसी को पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज आप अपना जीवन प्रभु के निकटता में ले आए। प्रभु से कहें, प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आइए और मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे नया व्यक्ति बनाइए ताकि मैं आपकी निकटता में रहकर उन आशीषों को प्राप्त कर सकूं। मेरे श्रोता मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। छोड़ के तेरी चौखट को यीशु जाओ।